सत्य वचन कार्यक्रम सुनने वाले श्रोता भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार विस्तृत रूप से अध्ययन किया करते हैं और हमें विश्वास है कि ये अध्ययन आपके जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। तो आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई थिस्लुनियों के नाम पहली पत्री का अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसका मुख्य विषय है यीशु का पुनरागमन। सेंट पौलुस ने ये पत्री एक घनिष्ठ मित्र व आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में लिखी है। श्रोताओं, इस पत्री में सेंट पौलुस नए विश्वासियों को विश्वास में दृढ़ एवं अटल रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आइए आज हम सबसे पहले इसकी रूपरेखा को देखेंगे। अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और अपने जीवन के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करें। सुनते हैं कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। आज मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि आज हम नए नियम की पत्री में से पहले थिस्सलुनीकी नामक पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम आज नए नियम से थिस्सलुनीकी की कलिसिया को लिखे पौलुस के पत्रों का अध्ययन आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। आज हम थिस्सलुनीकियों की पत्री से अध्ययन करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबसे बोले और बातचीत करें, हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं निश्चित रूप से आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो निराश हैं, बीमार हैं, चिंतित हैं या किसी प्रकार के तनाव और दबाव में हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी अपनी शांति दें, उन्हें छुटकारा दें ताकि वे भी आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सकें। इस समय फिर से हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ें और आज एक नए पत्र से अपने अध्ययन को आरंभ करें। नए नियम के क्रम के अनुसार यह अनुपम पत्र पौलुस के पत्रों के अंत में रखा गया है, परंतु सच तो यह है कि यह पत्र पौलुस द्वारा विभिन्न कलिसियाओं को लिखे गए पत्रों में सबसे पहला पत्र है जो लगभग 52 या 53 ईस्वी सन में लिखा गया था। हम देखेंगे इसके स्थान को, थिस्सलुनीकी के एक रोमी उपनगर था, अन्य देशों की तुलना में रोम जीते हुए प्रांतों के साथ एक अलग नीति अपनाता था। उन्होंने अपने अधीनस्थ प्रांतों की संस्कृति, भाषा, आचार विचार और रीति रिवाजों को सीधा सीधा बदलने की अपेक्षा संपूर्ण राज्य में महत्वपूर्ण स्थानों में उपनगरों की स्थापना की, जिससे कि ये उपनगर रोमी नियम, रीति रिवाज और आचार विचारों को अंततः स्वीकार कर लें। उनके कपड़ों की दुकानों में रोम की आधुनिकतम पोशाकें होती थी। इस प्रकार ये उपनगर एक छोटा रोम ही होते थे। थिस्सलुनीके भी रोम का एक उपनगर था और रोमी साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण नगर था। थिस्सलुनीके फिलिपी नगर के पश्चिम में 150 किलोमीटर दूर तथा एथेन से 75 किलोमीटर उत्तर में स्थित था। सिसोरे ने कहा कि थिस्सलुनीके रोमी साम्राज्य की गोद में है। यह स्थान साम्राज्य के केंद्र में मकीदुनिया का मुख्य नगर था। मेरे मित्रों, इस नगर का प्राचीन नाम थर्मा था, अर्थात गर्म, क्योंकि वहां गर्म जल के सोते थे। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान के चार सेनापतियों में से एक कसांडर ने मकीदुनिया जीता और थिसलोनिके को अपना मुख्यालय बनाया और अपनी पत्नी थिसलोनिके की स्मृति में इस नगर का नाम थिसलोनिके रखा। थिसलोनिके सिकंदर महान की आधी सौतेली बहन थी। वह नगर आज भी है और उसका नाम सलोनिका है। पौलुस की प्रचार यात्रा में स्थापित वहां की कलिसिया एक आदर्श कलिसिया थी। अपने इस पत्र के पहले अध्याय में पौलुस इस बात का उल्लेख करता है जिसे हम पद 7 में पाते हैं। लिखा है, यहाँ तक कि मकीदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। यह कलिसिया उस संपूर्ण प्रदेश के लिए जिसे हम आज यूनान कहते हैं उसके लिए मसीह की गवाह थी। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 1-5 पद में पौलुस इस कलिसिया को कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए एक उदाहरण कहता है। आपको स्मरण होगा कि दूसरी प्रचार यात्रा आरंभ करने से पूर्व बरनाबस और पौलुस अलग हो गए थे। पौलुस सिलास को साथ लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और आगे चलकर तिमोथियस और डॉक्टर लुका भी उनके साथ हो लिए। उसने गलातिया प्रदेश की कलिसियाओं से भेंट की और आज के तुर्किस्तान एशिया माइनर के घनी जनसंख्या के प्रदेश में जाने का विचार किया। मेरे विचार में वह वहां प्रचार करना चाहता था, परंतु परमेश्वर की आत्मा ने उसे दक्षिण जाने से रोका। परंतु तीसरी प्रचार यात्रा में उसने इफिसुस को अपना केंद्र बनाकर महान प्रचार कार्य किया। दक्षिण में रुकावट के कारण वह उत्तर में बिथुनिया को जाना चाहता था, परंतु परमेश्वर के आत्मा ने उसे वहां जाने से भी रोका। अब क्योंकि वह दक्षिण में नहीं जा सकता था और उत्तर में भी नहीं जा सकता था, अतः वह पश्चिम में त्रोवास को पहुंचा और परमेश्वर के निर्देशों की प्रतीक्षा करने लगा। वहां उसे मकीदुनिया के पुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ और वह फिलिपी नगर को चला गया। वहां उसे पता चला कि मकीदुनिया का वह पुरुष एक स्त्री है जिसका नाम लुदिया है। वह एक बड़ी दुकान चलाती थी। पौलुस ने उसे और अन्य नगरवासियों को सुसमाचार सुनाया। इस प्रकार वहां कलिसिया की स्थापना हुई। इसके बाद पौलुस थिसलोनिके नगर को गया और प्रेरितों के काम अध्याय 17 में व्यक्त है कि वह 3 विश्राम दिवस वहां रहा। इसका अर्थ है कि पौलुस वहां पर 1 माह से कम समय तक रहा, परंतु इसी बीच वहां उसने महान प्रचार कार्य किए। पौलुस एक प्रभावशाली प्रचारक था। उसने असंख्य लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। एक छोटे से समय में उसने वहां कलिसिया की स्थापना की। कलिसिया की स्थापना ही नहीं, वरन उसने उन्हें मसीही विश्वास के महान सिद्धांत भी सिखाए। मेरे प्रियो, पौलुस को शीघ्र ही थिसलोनिके नगर छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां सुसमाचार का घोर विरोध किया गया। वह वहां से भागकर बीरिया नगर को आया। उसके बैरे वहां भी पहुंच गए, अतः पौलुस को वहां से भी भागना पड़ा, अर्थात कूच करना पड़ा। परंतु उसने सिलास और तिमोथियस को बीरिया में ही छोड़ दिया और एथेंस को चला गया। एथेंस में कुछ समय प्रचार करने के बाद वह कुरिन्थ नगर को चला गया। संभवतः कुरिन्थ में सिलास और तिमोथियस पौलुस के पास आए और थिसलोनिके के विश्वासियों का समाचार उसे सुनाया, जिसे हम पहला थिसलोनिकियों की पत्री 3 अध्याय के 6 पद में पाते हैं। तिमोथियस ने थिसलोनिके के विश्वासियों के सामने उपस्थित कुछ प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों के उत्तर में पौलुस ने उन्हें यह प्रथम पत्र लिखा था कि उन्हें कुछ और निर्देश दे और आवश्यक ढाड़स बंधाए। मेरे मित्रों, हम इससे पत्र के विषय को देखते हैं। यद्यपि पौलुस थिसलोनिके में 1 माह भी नहीं रहा, उसने उन्हें कलिसिया के संबंध में महान सिद्धांतों की शिक्षा दी और प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन की अंतर्दृष्टि भी प्रदान की। यह बड़ी रोचक बात है कि पौलुस ने यह नहीं सोचा कि उसकी शिक्षाएं उन नए विश्वासियों के सिर पर से जाएगी या नहीं। आज भी तो ऐसी कलीसियाएं हैं जो 100 वर्ष से अधिक पुरानी हैं, परंतु उनके सदस्यों में कलीसिया को उठा ले जाने के लिए प्रभु यीशु के आगमन और पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए उसके आने की समझ स्पष्ट नहीं है। वे केवल नाम मात्र के लिए ही जानते हैं कि वह फिर आएगा। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया 1 महीने पुरानी भी नहीं हुई थी कि पौलुस उन्हें ऐसी महान शिक्षाएं दे रहा था। स्पष्ट है कि पौलुस ने प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर बल देकर विश्वासियों को शिक्षा दी और उन्हें यह भी बताया कि प्रभु यीशु का फिर से आना निश्चित है। जब पौलुस वहां से चला गया तो कुछ विश्वासी जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था उनकी मृत्यु हो गई। अब उन विश्वासियों के मन में एक प्रश्न था कि जब प्रभु यीशु फिर से आएगा तब क्या होगा, अर्थात इन मृतकों का क्या होगा। मृतक विश्वासी भी कलीसिया में उठाए जाने में सम्मिलित होंगे या नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में पौलुस मसीह के पुनः आगमन के संबंध में थिस्सलुनीकी के विश्वासियों को ढाड़स बंधाता है और यही इस पत्री का विषय है। पौलुस द्वारा प्रभु यीशु का यह आगमन प्रभु यीशु के उस आगमन से भिन्न है, क्योंकि उस समय जब वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने पर आएगा तब वह महिमा में होगा और विनाश ढाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 11 से 16 पद के अनुसार वह अधर्म का नाश करेगा। इस पत्री को लिखने का उद्देश्य भी हम देखते हैं। इस पत्री के उद्देश्य 3 है। पहला, युवा विश्वासियों को सुसमाचार के प्राथमिक सत्य में स्थिर करना। दूसरा, उन्हें पवित्र जीवन में चलते रहने का स्वभाव प्रदान करना। तीसरा है, उन्हें प्रभु यीशु के पुनः आगमन के संबंध में ढाड़स बंधाना। पौलुस का यह संदेश अन्य जाति विश्वास से सर्वथा विपरीत था। थिस्सलुनीके में एक अन्य जाति शिला लेख पाया गया है जिसमें लिखा है, मृत्यु के बाद जीवन नहीं है, कब्र के बाद पुनर्मिलन नहीं होगा। मेरे मित्रों, हम पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों में तुलना को देखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों में प्रभु यीशु द्वारा कलीसिया के उठाए जाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। मसीह का आगमन एक शोधनकारी आशा है और इसके कारण हमें अपने जीवनों को पवित्र रखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। आज अनेक जन भविष्यवाणी पर विवाद करना चाहते हैं और इस विषय पर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। पहला योहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, जो कोई यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। इस आशा का प्रभाव हमें पवित्रता में ले चलता है। मैं चिंता नहीं करता कि कलीसिया के उठाए जाने के प्रति आप में कितनी रुचि है या कितना उत्साह। मैं जो जानना चाहता हूं वह यह है कि आपका जीवन कैसा है। क्या यह आशा आपके जीवन स्तर तक पहुंची है और आपके जीवन में परिवर्तन किया है, या आप सिर्फ ये आशा कर रहे हैं या यह सोच रहे हैं कि प्रभु एक दिन आएगा लेकिन आप उसके लिए अंदर से सहमत नहीं हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री में ध्यान का केंद्र प्रभु यीशु द्वारा पृथ्वी अपने राज्य की स्थापना हेतु पुनः आगमन पर है। प्रभु द्वारा उससे भेंट करने के लिए कलीसिया का हवा में उठाया जाना कि उससे वह भेंट करे और उसके द्वारा पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आना। मेरे प्रियो, इन दोनों में महान अंतर है। मेरे विचार में आज अनेक विकृत प्रकार की धर्म विज्ञान है। हमें हमारे हवा में उठाए जाने और पृथ्वी पर प्रभु के आगमन में बहुत अंतर है। आज हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसके 1 अध्याय में, जिसका विषय है प्रभु यीशु का आगमन प्रेरणादायक आशा है। आइए हम देखें 1 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, पौलुस और सिल्वानुस और तिमोथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। यह प्रस्तावना पौलुस के अन्य पत्रों के समान ही है, परंतु कुछ अंतर है जिन पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। पौलुस अपने अभिवादन में सिलास और तिमोथियुस का नाम भी लेता है। स्मरण रखें कि सिलास और तिमोथियुस थिस्सलुनीकी की कलीसिया का समाचार लेकर अभी अभी लौटे हैं। उनका नाम अपने साथ जोड़ने से पौलुस थिस्सलुनीकी के विश्वासियों को यह जताना चाहता है कि इस पत्र के लिखने में तीनों एक मत हैं। उनका नाम लेकर पौलुस अपनी दीनता भी प्रकट करता है। यदि पौलुस उनका नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ेगा तो वे कलीसिया के लिए अपरिचित से ही बने रहेंगे। यह पौलुस का अति नम्र भाव है। वह सदा ही अपने आप को विश्वासी भाइयों से जोड़ करके रखता था। वह कभी यह नहीं दिखाना चाहता था कि वह अन्यों से अर्थात दूसरों से बड़ा सेवक है। मेरे प्रियो, आज हमें सेवा के क्षेत्र में इस बात पर विशेष ध्यान देना है। अपने प्रचारक को मंच पर खड़ा मत करो, उसे अपने मध्य रखो। हम सेवक ही उत्तरदायी हैं जो सेवकों और कलीसिया में अंतर उत्पन्न करते हैं। जब मैं पहली बार सेवा में आया तो मैं इस बात को समझ पाया कि पादरी साहब लोग चोगा पहनते हैं और कलीसिया के अन्य सदस्य कोट और टाई पहनते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम ही कलीसिया और सेवकों में अंतर बनाते हैं। मेरे प्रियो, मेरे विचार में तो परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि हम अलग ही दिखाई दें, परंतु यह तो है कि जब मैं परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता हूं तब मुझे यह ध्यान रखना है कि मैं उसके वचन की शिक्षा दे रहा हूं और उसकी ओर से बातें कर रहा हूं। वचन के प्रत्येक प्रचारक को यह बोध होना आवश्यक है। परंतु जहां तक जीवन शैली का प्रश्न है, वचन के शिक्षक और सेवक का जीवन किसी भी यीशु के विश्वासी से भिन्न ना हो। काश हम कलीसिया और प्रचारकों में अंतर मिटा पाएं। परमेश्वर के वचन के अनुसार तो यह झूठा अंतर है। हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि सेवकों को वेतन देना कलीसिया के लिए अभिशाप है, परंतु आज के विशेषज्ञों के युग में कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। तथापि हमें यह समझना है कि कलीसिया में झूठी शिक्षाएं वेतन भोगी सेवकों के द्वारा ही लाई गई है। कलीसिया की दो परिस्थितियां अति संकटपूर्ण हैं। पहली, अपने आप को बड़ा बनाने वाला सेवक। दूसरी, बाइबल का विद्वान बताने वाला कलीसिया का सदस्य जिसने बाइबल तो पढ़ी नहीं है परंतु विकृत शिक्षा अवश्य ग्रहण की है। मेरे लिए सबसे महान अनुशासन यह रहा है कि मैं परमेश्वर की वचन की समग्र शिक्षा को दूं। जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं उनसे परमेश्वर आशा रखता है कि वे वचन की सही शिक्षा दें। वह बाइबल में व्यक्त प्रत्येक विषय की शिक्षा देगा। वह अपना मनपसंद विषय ही नहीं सिखाएगा परंतु अन्य शिक्षाओं को भी उनके सामने रखेगा जो बाइबल में हैं। अन्य विषयों को अछूता नहीं छोड़ेगा। काश हमारी कलीसियाओं का ऐसा अनुशासन होता। मेरी मनोकामना है कि प्रत्येक कलीसिया संपूर्ण बाइबल का ज्ञान ग्रहण करे। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम। फिलिपी की कलीसिया की तुलना में उनकी जीवन शैली भिन्न थी, उनकी समस्याएं भी भिन्न थी, परंतु फिलिपी की कलीसिया के समान वे भी पिता परमेश्वर में और प्रभु यीशु में थे। पौलुस के अन्य पत्रों में यह देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यह पौलुस का प्रथम पत्र है। वह एक ही बार कहता है और यह पर्याप्त है, वह उसे दोहराएगा नहीं। प्रभु यीशु ने परमेश्वर से प्रार्थना में विनती की थी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 21 से 23 पद में, कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। मसीह में अवस्थित प्रत्येक विश्वासी पिता परमेश्वर में हैं। यह एक अत्यधिक सुरक्षित स्थान है, बैंक के किसी भी लॉकर से अधिक सुरक्षित। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरे प्रियो, यह पौलुस का औपचारिक अभिवादन है जो वह प्रत्येक पत्र में लिखता है। पहले अनुग्रह, इसके पश्चात परमेश्वर की शांति। अनुग्रह और शांति दोनों ही पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से आते हैं। मेरे प्रियो, यह क्या ही भली बात है कि पौलुस अपने लोगों को परमेश्वर की शांति और अनुग्रह के द्वारा उन्हें नमस्कार कहता है। आज हम एक दूसरे के साथ किस प्रकार का नमस्कार या अभिवादन ग्रहण करते और देते हैं? प्रिय मित्रों, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस के अभिवादन के बाद अब हम पत्र के आरंभ में आते हैं। तो आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री एक अध्याय उसके दो पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ध्यान दीजिए, पौलुस उन सब कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता था जिनकी नींव उसने डाली। पौलुस की प्रार्थना सूची बहुत बड़ी थी। आपके लिए यह एक अति रोचक अध्याय या विषय होगा कि आप उसकी सूची के नामों की खोज करें। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पौलुस कितनी कलीसियाओं, कितने मनुष्यों और कितने समूहों के लिए प्रार्थना किया करता था। मेरे प्रियो, वह कहता है, सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पौलुस इस कलीसिया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता था, जिसके अनेक कारण हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वे एक आदर्श कलीसिया थे। अगला पद बाइबल का एक असाधारण पद है और वह पौलुस का एक विशिष्ट प्रकार है जिसे हम उसके पत्रों में देखते हैं। वह तीन के अंक पर विशेष बल देता है, लेकिन इसे हम अगले अध्ययन में देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस अपनी कलीसिया जहां जहां भी उसने स्थापित की, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक कलीसिया के लिए उसने प्रार्थनाएं की। आज दुखद बात तो यही है कि हम अपनी कलीसिया के अंदर अपने लोगों के लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं, परंतु पौलुस अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता था। आज हमारे पासवान, हमारे प्राचारक अपने लोगों के लिए कितने समय प्रार्थना में व्यतीत करते हैं, हमें निश्चय ही इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पौलुस कहता है कि मैं सबको, अर्थात सबके लिए, सबके विषय में प्रार्थना करता हूं। मेरे मित्रों, आइए आज हम इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को भी जांचें, जिस प्रकार पौलुस कलीसिया को स्थापित करने के बाद अपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं किया करता था, हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को उत्साहित करें, ताकि हमारी कलीसिया में प्रभु के वचन की बढ़ोतरी हो, प्रेम की बढ़ोतरी हो, एक दूसरे के लिए हम एक नमूना और आदर्श का कारण बन जाएं। हम अगले अध्ययन में इस विषय पर और अधिक चर्चा करेंगे। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि इस पत्री के अध्ययन के द्वारा हम अवश्य ही अपने कलीसियाओं के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवनों के लिए एक लाभकारी बातों को सीखेंगे जो हमारे जीवन के लिए अति आत्मिक लाभ का कारण होगा। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 1100019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। बिना भक्ति अधूरी, कृष्ण शरण तुझे आना है, छोड़ दे अपनी शक्ति बल, कृष्ण में मोह लगाना है। भक्त बिना भक्ति अधूरी, कृष्ण शरण तुझे आना है, छोड़ दे अपनी शक्ति बल, कृष्ण में मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो प्रभु में, प्रभु की आशीष पाना है। जय जयकार करो मिल सारे, धन्य मनाना है। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। शांति मुक्ति का मार्ग वही है, उसमें मोह लगाना है। सच्चा साथी प्रभु हमारा, उसे अपनाना है। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो।